एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत परिचय संक्षिप्त, गंभीर और विचारोत्तेजक।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे लेखक और उनके उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जिसने हमारी भाषा को एक नया ही शब्द दे दिया, काफकाइस्क।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं प्राग के फ्रांस काफका और उनके अधूरे मगर बेहद प्रभावशाली उपन्यास द ट्रायल की, जिसे हम मुकदमा भी कह सकते हैं।
जी, काफका वो दिन में तो बीमा कंपनी में वकील थे।
हाँ।
और रात में मतलब अपने अकेलेपन, अपने डर और उन अजीब सपनों को कहानियों में बदलते थे। उन्होंने वो जो नौकरशाही का बेजान, कभी कभी तो एकदम बेतुका चेहरा होता है ना,
हाँ हाँ,
उसे बहुत करीब से देखा था।
सही कहा, और लगता है वही अनुभव उनके लेखन में साफ झलकता है, खासकर द ट्रायल में।
बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने लिखा तो 1914-15 के आसपास था, लेकिन ये छपा उनकी मृत्यु के बाद 1925 में। और ये कोई मतलब सीधी सादी कहानी वाला उपन्यास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं दार्शनिक भंवर है जो पढ़ने वाले को अंदर खींच लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां नियम पता नहीं क्या है, न्याय मिलता नहीं और आरोप लगना ही मतलब वही सजा बन जाता है।
तो चलिए आज इसी अनोखी कृति की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही मतलब एकदम चौंकाने वाली है।
हाँ, वो पहली लाइन ही कमाल है। किसी ने योसेफ के बारे में जरूर झूठ बोला होगा, क्योंकि बिना कुछ गलत किए ही एक सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
बस यहीं से शुरू होती है योसेफ के की कहानी। एक बैंक का सम्मानित अधिकारी है वो।
हाँ बिल्कुल, तर्क और व्यवस्था में जीने वाला आदमी। और अपने 30वें जन्मदिन पर दो अजनबी आकर उसे बताते हैं कि भाई तुम गिरफ्तार हो।
और सबसे अजीब बात, जुर्म क्या है ये कोई बताता ही नहीं।
नहीं बताता।
गिरफ्तारी भी ऐसी कि मतलब वो आजाद है, अपना काम कर सकता है।
हाँ, बस उसे एक अनजान सी अदालत की सुनवाइयों में जाना है कभी कभार।
तो ये गिरफ्तारी का में एक अजीब सा अनिश्चित इंतजार ज्यादा लगता है ना।
बिल्कुल, और यहीं से उसका वो संघर्ष शुरू होता है। पहले तो ये जानने का कि आरोप क्या है, फिर ये कि इस रहस्यमय, जैसे कोई भूल भुलिया हो, ऐसी न्याय व्यवस्था के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे।
और ये अदालत भी कोई आम अदालत नहीं।
नहीं नहीं, कोई बड़ी इमारत में नहीं, बल्कि आम घरों की गंदी भरी भरी सी अटारियों में या वकीलों के दफ्तरों के पीछे के कमरों में लगती है।
शुरू में क्या कोशिश करता है, अपनी मकान मालकिन फ्राउ ग्रुबॉक्स से या पड़ोसन फ्राउलाइन बर्स्टर्नर से सामान्य बात करने की। लेकिन ये मुकदमा जैसे उसकी वो आम मानवीय रिश्तों की जो क्षमता होती है ना, उसको भी धीरे धीरे सोख लेता है।
शुरुआत में अगर देखें तो योसेफ के काफी आत्मविश्वास से भरा लगता है। उसे लगता है कि ये जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, और वो सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से, तर्क से इसे सुलझा लूंगा।
बिल्कुल, आखिर वो बैंक का एक बड़ा अधिकारी है, प्रोक्टरिस्ट, एक व्यवस्थित दुनिया का आदमी।
पर जिस चीज का वो सामना कर रहा है वो तर्क की दुनिया से बिल्कुल बाहर है।
हाँ, तो यहाँ सवाल यही उठता है कि जब आपका तर्क एक ऐसी व्यवस्था से टकराता है जो पूरी तरह अतार्किक है, अपारदर्शी है, तो फिर होता क्या है?
धीरे धीरे यही होता है कि ये मुकदमा ये के को जैसे निगलने लगता है।
अच्छा,
उसका काम बिगड़ने लगता है, उसके जो रिश्ते हैं वो बस इस बात पे टिक जाते हैं कि कौन उसके केस में मददगार हो सकता है, कौन नहीं। वो जो उसका शुरुआती आत्मविश्वास था, वो धीरे धीरे चिंता, शक और एक बहुत गहरी, कभी ना खत्म होने वाली थकान में बदल जाता है। ये कोई चरित्र का विकास नहीं है।
नहीं, ये तो उसका विघटन है।
हाँ, उसका टूटना है, उसका क्षय है।
और वो अपराध बोध की भावना, उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसने क्या गलत किया है।
बिल्कुल नहीं, पर वो धीरे धीरे उस भावना को जैसे अपने अंदर उतार लेता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसका होना ही, उसका अस्तित्व ही अपने आप में एक अपराध हो।
हाँ, ये आधुनिक इंसान की जो त्रासदी है उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है वो। अकेला, शक्तिहीन, एक ऐसी व्यवस्था के सामने जो हर जगह मौजूद है पर जिसका कोई चेहरा नहीं है, पूरी तरह से निर्वैयक्तिक।
और इस उपन्यास में जो विलेन है वो कोई एक आदमी नहीं है,
नहीं
बल्कि पूरी प्रणाली है ये अदालत। अब ये किसी दमनकारी सरकार का प्रतीक हो सकती है, या शायद कोई अनदेखी धार्मिक सत्ता, या फिर बस वो आधुनिक नौकरशाही जहां नियम इंसान से बड़े हो जाते हैं।
और इसके जो अधिकारी हैं वो वार्डर, जज, वकील, वो भी कोई शैतान जैसे नहीं दिखाए गए।
नहीं, वो तो बस इस बड़ी सी मशीन के थके हुए, अक्सर थोड़े भ्रष्ट पुर्जे लगते हैं।
और इस अदालत की असली ताकत शायद उसकी अस्पष्टता में ही है ना।
बिल्कुल, कोई हेडक्वार्टर नहीं, कानून क्या है पता नहीं, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है ये भी मालूम नहीं।
और सबसे खास बात तो यह है कि प्रक्रिया ही सजा है।
हाँ, आरोप लगने के बाद बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो अंतहीन टालमटोल चलती रहेगी या फिर एक भयानक निश्चित अंत होगा।
तो केस भूलभुलैया में कैसे, मतलब कैसे रास्ता खोजने की कोशिश करता है?
उसकी पहली कोशिश होती है पहली पूछताछ में। उसे रविवार को बुलाया जाता है, टाइम भी नहीं बताते।
अच्छा।
वो एक भीड़ भरी घुटन वाली अटारी में पहुंचता है और वहां एक जोरदार भाषण देता है, पूरी व्यवस्था की, उसके भ्रष्टाचार की, उसके बेतुकेपन की निंदा करता है।
और उसका कुछ असर होता है?
लगभग कुछ नहीं। कुछ तालियां बजती हैं, लोग फुसफुसाते हैं, पर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये दिखाता है कि भाई ऐसी अतार्किक दुनिया में तर्क और शब्दों की ताकत कितनी कम है।
हाँ, बाद में जब वो दोबारा उन अदालती दफ्तरों में जाता है तो उसे वो अर्दली की पत्नी मिलती है,
हाँ।
जो मदद के बदले मतलब यौन संबंध बनाने का इशारा करती है। इससे केपो और समझ आता है कि ये जगह कानून की नहीं बल्कि निजी असर और नैतिक पतन की है।
ये तो सिस्टम के अंदर की खोखलेपन को दिखाता है।
लेकिन क्या कोई ऐसी घटना भी होती है जो केक को सिस्टम की सिर्फ बेतुकीपन नहीं बल्कि उसकी क्रूरता का भी एहसास कराती है?
हाँ, वो एक भयानक सीन है जब वो बैंक के ही एक स्टोर रूम में देखता है कि उसकी गिरफ्तारी करने वाले जो दो वार्डर थे,
हाँ हाँ
उन्हें एक चाबुक मारने वाला बड़ी बेरहमी से पीट रहा है, और उनका जुर्म बस इतना कि उन्होंने के बारे में मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी।
ओहो।
के उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। अगले दिन वो फिर उस कमरे में झांकता है तो वही सीन फिर चल रहा होता है। ये के लिए बहुत बड़ा झटका था।
बिल्कुल।
यहां उसकी जो बौद्धिक अवज्ञा थी वो सिस्टम की नंगी क्रूरता से टकराती है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है, इसके असली हिंसक नतीजे हैं।
हाँ
इसी घटना के बाद शायद वो कानूनी मदद लेने की सोचता है ना?
हाँ बिल्कुल। वो वकील हेयर होल्ट के पास जाता है। वो बीमार है, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। होल्ट का घर भी बड़ा अजीब सा है। उसकी नर्स है लेनी, जिसे आरोपी मर्दों के प्रति एक अजीब सा खिंचाव है, और होल्ट का काम करने का तरीका बहुत धीमा, बहुत रहस्यमयी। वो बस व्यक्तिगत संपर्कों की और कभी न खत्म होने वाली याचिकाओं की बातें करता है जो शायद कभी जमाई नहीं होती।
मतलब केको लगना लगता है कि ये वकील उसे बचाने की बजाय इस दलदल में और फंसा रहा है।
हाँ बिल्कुल यही।
यानी मदद की तलाश उसे और उलझा देती है। फिर वो टिटोरेली के पास जाता है, वो पेंटर।
हाँ, अदालत का पेंटर।
वहां क्या पता चलता है उसे?
टिटोरेली, जो खुद अदालत की इमारतों की अटारियों में ही रहता है, वो उसे और भी कड़वी सच्चाई बताता है।
क्या कहता वो?
वो कहता है कि निश्चित दोष मुक्ति, मतलब पूरी तरह बरी होना, ये तो असंभव है। ये बस एक कहानी है जो लोग सुनाते हैं। असली में विकल्प सिर्फ दो हैं, या तो स्पष्ट दोष मुक्ति जो टेम्प्रेरी होते हैं, आरोप कभी भी दोबारा लग सकता है,
अच्छा,
या फिर अनिश्चित स्थगन, जिसमें केस को बस लटकाए रखने की कोशिश की जाती है, हमेशा सबसे निचले लेवल पर।
ये तो मतलब उम्मीद की पूरी तरह मौत है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जीतना तो मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ हारने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।
हाँ, ये सिस्टम की जो निराशाजनक सच्चाई है उसे एकदम सामने रख देता है।
इसी हताशा में शायद वो ब्लॉक से मिलता है, वो व्यापारी।
हाँ, जब वो होल्ड को बर्खास्त करने जाता है तो वहां उसकी मुलाकात व्यापारी ब्लॉक से होती है। वो 5 साल से ज्यादा वक्त से होल्ड का क्लाइंट है और पूरी तरह वकील की गुलामी में जी रहा है।
और के देखता है कि होल्ड ब्लॉक के साथ कैसा बर्ताव करता है।
हाँ बिल्कुल, कुत्ते जैसा बर्ताव करता है। ये देख करके के को शायद अपनी भविष्य की एक झलक दिख जाती है और वो होल्ट को बर्खास्त कर देता है, अकेले लड़ने का फैसला करता है, हालांकि उसके पास कोई प्लान नहीं है।
और फिर?
फिर आता है वो कैथेड्रल वाला सीन और वो प्रसिद्ध दृष्टांत पैराबल।
हाँ, उस समय तक के की मानसिक हालत काफी बिगड़ रही होती है। बैंक उसे एक इटालियन क्लाइंट को शहर का कैथेड्रल दिखाने भेजता है। क्लाइंट तो आता नहीं, पर उस विशाल अंधेरे कैथेड्रल में एक पादरी के का नाम पुकारता है। वो जेल का पादरी निकलता है और बताता है कि भाई के का मामला बुरा चल रहा है।
और फिर वो उसे वो कहानी सुनाता है
हाँ, वो मशहूर कहानी कानून के समक्ष,
जिसमें एक आदमी कानून तक पहुंचना चाहता है पर दरवाजे पर एक दरबान उसे रोक देता है, और वो आदमी अपनी सारी जिंदगी वहीं इंतजार करता है, और मरने से ठीक पहले दरबान उसे बताता है कि ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए था और अब बंद हो रहा है।
ये कहानी तो जैसे जैसे पूरे उपन्यास का सार है, नहीं?
बिल्कुल, ये के की पूरी स्थिति का, उसकी पूरी दुर्दशा का निचोड़ है। न्याय का रास्ता है तो व्यक्तिगत, पर उस तक पहुंचना असंभव है। ये मुकदमे को सिर्फ कानूनी दायरे से निकाल के एक गहरे, शायद आध्यात्मिक या अस्तित्ववादी सवाल में बदल देता है।
और इस निराशाजनक ज्ञान के बाद अंत लगभग तैसा लगता है।
हाँ, के 31 से जन्मदिन की शाम दो अजीब से बेदाग कपड़े पहने आदमी उसके अपार्टमेंट आते हैं। बहुत विनम्र हैं वो।
और के
अब पूरी तरह थक चुका है। उसमें विरोध करने की कोई इच्छा ही नहीं बची है। वो समझ जाता है कि ये उसके जल्लाद हैं। वे उसे शहर की सड़कों से होते हुए शहर के बाहर एक खदान में ले जाते हैं। वहां एक आदमी कसाई का दोधारी चाकू निकालता है। एक पल को के को लगता है कि शायद उससे उम्मीद की जा रही है कि वो खुद ही चाकू लेकर अपनी जान ले ले।
लेकिन वो कर नहीं पाता।
हाँ, वो नहीं कर पाता। फिर एक आदमी उसे पकड़ता है और दूसरा चाकू उसके दिल में घोपकर दो बार घुमाता है।
और उसके अंतिम शब्द बहुत मार्मिक हैं वो।
हाँ, दूर किसी खिड़की में एक धुंधली सी आकृति को देखते हुए वो कहता है, एक कुत्ते की तरह।
एक कुत्ते की तरह। ये सिर्फ शारीरिक मौत का अपमान नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया का अपमान है जिसमें उसे बिना कारण बताए, बिना समझे, एक अमानवीय सिस्टम द्वारा खत्म कर दिया गया। ये शायद उसकी अपनी निष्क्रियता पर भी एक चीख है, और उस दुनिया की बेरहमी पर भी जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया।
चलिए अब थोड़ा रुककर उन मुख्य विषयों पर बात करते हैं जो काफ्का इस उपन्यास के जरिए उठाते हैं। सबसे पहले तो वो अपराध और निर्दोषता का सवाल ही।
हाँ, के का अपराध क्या है ये कभी पता नहीं चलता।
क्या वो सचमुच निर्दोष है, या जैसा कि अदालत का सिद्धांत लगता है कि अपराध खुद दोषी को खींचता है, क्या आरोप लगना ही अपराध का सबूत बन जाता है?
हाँ, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, के खुद भी एक दोषी की तरह बर्ताव करने लगता है, छिपता है, डरता है। काफ्का शायद ये कह रहे हैं कि जब सत्ता मनमानी और अतार्किक हो तो निर्दोषता और अपराध के बीच का फर्क ही मिट जाता है।
और ये सीधी तौर पर नौकरशाही के अत्याचार और व्यक्ति के अमानवीकरण से जुड़ता है।
बिल्कुल। काफ्का ने खुद बीमा कंपनी में काम करते हुए ये देखा था कि कैसे नियम और प्रक्रियाएं इंसानियत पर हावी हो सकती हैं।
ये अदालत एक ऐसी ही आत्मकेंद्रित व्यवस्था है जो अपने ही तर्क पर चलती है, भले ही वो बाहरी दुनिया के लिए कितना ही बेतुका क्यों ना हो। अधिकारी बस मशीन के पुर्जे हैं।
और लोग जैसे के या ब्लॉक, वो सिर्फ केस फाइल बनकर रह जाते हैं। ये आज भी एक चेतावनी है कि कैसे सिस्टम व्यक्ति को कुचल सकते हैं।
और इसी में न्याय की वो विकृत प्रकृति दिखती है। के तर्क और कारण पर आधारित फैसला चाहता है, पर अदालत इसका मजाक उड़ाती है।
कार्यवाही गुप्त, कानून पहुंच से बाहर, नतीजा पहले से तय। सच्ची दोष मुक्ति तो है ही नहीं। यहाँ तो सचमुच वो अंधे नगरी चौपड़ राजा वाली बात लगती है।
हाँ, जहाँ न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह गया है।
साथ ही अलगाव और अकेलेपन का विषय भी बहुत गहरा है इसमें।
बहुत। जैसे जैसे मुकदमा के पर हावी होता है, वो अपने काम से, अपने समाज से, यहाँ तक कि खुद से भी कटता जाता है। रिश्ते बस मतलब के रह जाते हैं।
वो अपनी इस अजीब मुसीबत में एकदम अकेला है।
हाँ, ये उस जड़हीनता और आध्यात्मिक अकेलेपन को दिखाता है जो अक्सर आधुनिक जीवन का हिस्सा माना जाता है।
और अंत में वो अस्तित्व की बेतुकीपन वाली बात, एब्सर्डिटी। ये उपन्यास तो एब्सर्डिस्ट साहित्य का एक मील का पत्थर है।
बिल्कुल। के तर्क और अर्थ खोजना चाहता है, पर ब्रह्मांड या कहें कि अदालत, वो चुप है, अतार्किक है। उसके सारे प्रयास, वो भाषण देना, जजों को ढूंढना, वकीलों से मिलना, ये सब बेतुके हैं, क्योंकि वो इस गलत धारणा पर आधारित हैं कि दुनिया तर्क और न्याय पर चलती है।
वो कानून के समक्ष वाला दृष्टांत इसी बेतुकेपन का चरम है। यहाँ शायद वो शेर वाली बात पूरी तरह लागू नहीं होती कि मिले खाक में हम फिर भी असर बाकी है।
हाँ, सवाल यही है कि क्या इस संघर्ष का कोई असर है भी, या ये सिर्फ एक व्यर्थ का चक्कर है।
काफ्का के लिखने की शैली भी मतलब कमाल की है। वो तीसरे व्यक्ति सीमित दृष्टिकोण से लिखते हैं।
हाँ, यानी हम सब कुछ केक की नज़रों से देखते और महसूस करते हैं। इससे पढ़ने वाला भी उसी भ्रम, उसी घुटन और हताशा का अनुभव करता है। हमें कभी अदालत का बाहरी ऑब्जेक्टिव नज़रिया नहीं मिलता,
जो रहस्य और डर को और बढ़ाता है।
बिल्कुल।
और वो काफ्केस्क माहौल, एकदम साधारण रोजमर्रा के विवरणों के बीच भयानक सपने जैसी घटनाएं।
हाँ, अदालतें भव्य इमारतों में नहीं, धूल भरी अटारियों में। जल्लाद कोई राक्षस नहीं, बल्कि विनम्र सज्जन।
सामान्य और विचित्र का ये मेल ही उस डर को ज्यादा प्रभावी और बेचैन करने वाला बनाता है।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना असलियत से अलग नहीं, बल्कि उसी की सतह के नीचे छिपा हुआ है।
और उपन्यास में प्रतीक भरे पड़े हैं। वो अदालत, तंग गलियां, घुटन भरी हवा, सब के की मानसिक स्थिति और उस सिस्टम के दमन को दिखाते हैं। वाकई द ट्रायल हमें शक्तिहीनता के अनुभव और उन अदृश्य अतार्किक ताकतों के सामने व्यक्ति के अकेले संघर्ष पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है।
और ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या आज की जटिल दुनिया में सच्चा न्याय या स्पष्टता पाना संभव भी है, या हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में योसेफ के की तरह ही अपने अपने अंतहीन मुकदमों में उलझे हुए हैं।
संगीत हल्का सा उभरता और फीका पड़ जाता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।